ओम शांति। आज 20 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। चारों टाइम रोजाना एक ही लिंक रहता है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम्हारा अपना स्वधर्म ही क्या है? शांत। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते हो। बाबा क्या करने आए हैं? बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। आज सारी दुनिया के अंदर शांति और सुख का ही अभाव है। जिसका अभाव है वही बाबा हमें देने आए। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। बाबा कहते तुम्हारा अपना स्वधर्म ही क्या है? शांति। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। दुनिया सारी शांति के लिए भटकती है, हम नहीं भटकते, क्योंकि हमें यह समझ में आ गया है स्वधर्म। हाँ, शांति जो है वो हमारा अपना धर्म है, हम उसको धारण करें। अब हमें उधर उधर जाकर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया शांति के लिए भटक रही थी, हम भी उनमें शामिल थे, हम कोई उनसे अलग नहीं थे, हम भी सारी दुनिया में भटक रहे थे। अब बाबा ने आकर हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया, ठीक है कि नहीं? तो अब हम समझ गए हैं कि शांति तो हमारा स्वधर्म है, उसे बाहर कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जंगल में, पहाड़ में, या क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे 21 जन्म के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। अभी तुम 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। ये क्या मतलब होता है वजन करना? अखुट खजानों में ऐसे खजाने जो कभी खुट नहीं सकते, कितना भी आप उसको भरना चाहो अपने में भरने योग्य बन सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाबा ने तो सारे खजाने आपके सामने रख दिए हैं, जितना ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, शांति का, पवित्रता का, जितना भी खजाना भरना चाहो भर सकते हो। भरने की शर्त हम सबको मालूम है। क्या है अपने खजाने को भरने की शर्त?
जितना बांटोगे उतना
बांटोगे, दूसरों को दे दो, जो दूसरों को दोगे वो तुम्हें देगा, आप नहीं दोगे तो तुम्हें कोई देने वाला नहीं। देने से तुम देवता बनते हो, नहीं देंगे तो देवता नहीं बनेंगे। जितना ज्यादा आत्माओं को देंगे उतना बड़े देवता बनेंगे, उतना बड़ा खजाना आपका होगा। क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनको उनके मददगार बनते, अपना सब कुछ, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। अब भी आप देते हो तो वो इतना खजाना आपका जमा हो जाता है, फिर आपको 21 जन्म प्रारब्ध के रूप में सब मिलता रहता है। नहीं देके जाएंगे देगा कोई? यदि आप अभी नहीं देके जाओगे तो आपको सतयुग में कोई देगा?
कोई नहीं देगा भाई।
कोई नहीं देगा, जितनों को देके जाएंगे उतने देंगे, कहां हिसाब लगाने के चक्कर में डाल दिया बाबा ने हमें। अच्छे भले भक्ति कर रहे थे, खुश रहते थे, भगवान हमारा ये कर दियो ये कर दियो ये कर दियो, अब सारा कुछ छीन लिया, मैं नहीं करूंगा कुछ भी, सारा कुछ करना है तो तुम्हें करना है, करो मारी मर्जी, नहीं करो तुम्हारी मर्जी, मिलेगा तुम्हें तुम्हारी करने,
कुछ नहीं करेंगे, हमको ही करना पड़ेगा सब।
हाँ, हमको ही करना पड़ेगा। गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है, कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम का अर्थ क्या निकलता है? आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। खाली ओम बोलेंगे तो अहम आत्मा। ओम का अर्थ क्या हो गया? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। अब शांति लगने से क्या हो जाता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है, पहले है आत्मा पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाप कोई जंगल में जाने, बाबा कोई जंगल में जाने से, बाकी जो नाम कोई जंगल में जाए सोचे कि हमें वहां सच्ची शांति मिले, नहीं मिलती। जंगल में जाने से कोई भी सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलना ही मिलनी ही है तब जब घर जाते। सच्ची शांति मिलती ही तब है जब हम घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहां अशांति है। शांति कहां चाहते हैं? जहां अशांति होती है, जहां पहले से ही शांति हो वो शांति क्यों चाहेगा? यह अशांति का दुख विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा, वहां ना घर में ना बाहर, राजधानी में अशांति होती है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहां है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है वह है ईश्वर का राज स्थापन, वे है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है, असुरों को कभी शांति होती नहीं, असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में दुकान में जहां तहां अशांति ही अशांति होगी। पांच विकार रूपी रावण राज्य अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों जलाते हैं, हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों जलाते हैं। ये सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं, वह है ही देवी राज्य, ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करते हैं। तुम्हारे द्वारा अकेले तो नहीं, अकेले तो नहीं करते, तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम ईश्वर तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है, सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहां तो देखो गंध कितना खाते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं, वहां की गौ और यहां की गौ में बहुत फर्क है। वहां की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें, देखने से ही दिल खुश हो जाए, वो है ही स्वर्ग, ये है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं, स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है, महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं। किसी महात्मा को तोलेंगे सोने से चांदी से, हमने चर्चा की हुई है, हीरे से पैसे से लड्डू से किसी चीज से भी तोलते हैं, वो उसी को दे देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत विद्वान है। यहां भी बाबा ने क्या कहा, वजन करना हमारे लिए क्या कहा था, जितना जितना आप शांति पवित्रता बांटेंगे सुख बांटेंगे उतना आपका वजन होगा, याद आ रहा है आपको? वो फिर आपको अगले 21 जन्मों में मिलता रहेगा, जितना अब देंगे वो आपको 21 जन्मों में मिलता रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो किसी भी मतलब नेता को इलेक्शन में खड़ा होता है या किसी धर्म गुरु को आचार्य को कोई भी, उसको तोलते हैं, तोल करके उसको दे देते हैं। वो किस लिए देते हैं, ताकि उनके द्वारा फिर उनको मिलेगा या उनको मिला है, तो वो अपना एक 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 प्रकार का आभार अभिव्यक्त करते हैं, जैसे आपने किसी को दिया और वो आपको देगा। तो जितना ज्ञान का जितना पवित्रता का जितना शांति का जितना गुणों का आप करेंगे दान, तो उतना आपका वजन बढ़ जाएगा, वो वजन आपको अगले जन्मों में मिलेगा। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया है, क्यों है उनका प्रभाव, बाबा ने क्या समझाया है, झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है, ऊपर से नई आत्मा आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। सोने या हीरे में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खलास हो जाने हैं, चाहे वो सोना हो चाहे हीरे हो, वो सब यही रहने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत सौकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सौकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किन्हीं की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, सफली उसी की होगी जो ईश्वर के हाथ ईश्वर के नाम लगाए। किनकी दबी रही धूल में, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। उनको क्या मिलेंगे, 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। यहां तो एक जन्म के लिए, यहां तो एक जन्म के लिए मिलते हैं, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, शरीर सहित सब का सब क्या होने वाला है, भस्म हो जाना। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है, विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। अब फिर बाप आया है भक्ति मार्ग में, सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तो माता पिता अब यह सा ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, ये है पारलौकिक पर माता पिता की बात। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो, स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं, अब तुम उनको क्या इनाम देंगे, तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। जादूगरी से दिखलाते हैं, श्री कृष्ण के मुख में मां ने देखा मक्खन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वे तो मक्खन आदि नहीं खाएंगे, बस मक्खन ही नहीं खाएगा सतयुग में, क्या बात है, क्या खाता होगा फिर, वो तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है, ये अभी संगम की बात है। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा बन जाएंगे, बनेंगे विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं, क्रिश्चियन दो हैं क्या,
नहीं कैसे भाई जी दो होते हैं,
क्रिश्चियंस दो हैं, एक है कैथोलिक एक है प्रोटेस्टेंट, जैसे मुस्लिम दो हैं, एक है शिया एक है सुन्नी, इसी प्रकार से मतलब सभी के अंदर ऐसे मत मितंतर बहुत ज्यादा है। ये मेन दो हैं और उसके बाद इनकी ब्रांचेस बहुत है, जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत ब्रांचेस है, ऐसे ही इनके अंदर भी सभी धर्मों के अंदर बहुत ब्रांचेस है, ठीक है नहीं? मुस्लिम सारे एक नहीं है, इनके अंदर सैकड़ों ब्रांचेस हैं, तो मुस्लिम एक प्रकार के नहीं होते। तो इसी प्रकार से सभी के लिए, तो बाबा कहते हैं कि दोनों आपस में लड़ेंगे, एक है प्रोटेस्टेंट एक है क्रिश्चियन, जैसे शिया और सुन्नी ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं मुसलमान भी, ऐसे ही राम के भक्त और कृष्ण के भक्त ये भी, मतलब वो कहेगा राम भगवान है तो वो कहेगा कृष्ण भगवान है, वो कहता है मेरा बड़ा है तो वो कहता है मेरा बड़ा, करते रहो बड़े, सबके अंदर ये भेद रहता है। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और मक्खन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा लेते हैं, खा गए, क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, मतलब धरती के ऊपर 3/4 हिस्से में अंग्रेजों का राज्य था, और जो अब इंग्लैंड, जो अंग्रेज पूरे भारत पर राज्य करते थे, वो आज जो है हमारे एक प्रांत के बराबर है। हमारे कितने प्रांत, वो उनका एक ही प्रांत, मतलब इतना छोटा सा होते हुए पूरे वर्ल्ड पर उन्होंने क्या किया, शासन किया। आज वो खुद इन्हीं मुसलमानों के अधीन होते जा रहे हैं, पौने हिस्से में थे, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके, सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो, विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। क्या समझ में आया, तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, मालिक और विश्व के मालिक दोनों के बनते हो, विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। मतलब जब हम विश्व की बात करते हैं तो उसमें ब्रह्मांड नहीं होता, ब्रह्मांड अलग है विश्व अलग है। विश्व तो केवल इस पृथ्वी पर रहने वाला जीवन, और ब्रह्मांड का मतलब है सारा का सारा, जहां तक ये ग्रह उपग्रह सारे हैं। और इसको यदि हम कहें कि कहां तक होंगे, उसके बाद कोई दीवार आएगी क्या? सोच कर देखो कि कहां तक ये ग्रह उपग्रह तारे कहां तक होंगे,
ब्रह्मांड के अंदर
नहीं, ब्रह्मांड कहां तक होगा? थोड़ा सा बैठकर सोचो, सूरज देखो कितनी दूर है, और उससे भी बड़े बड़े तारे कितना दूर हैं, जिनका प्रकाश हमारे तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, युगों लग जाते हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनका प्रकाश हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता, जिनको हम देख ही नहीं पाते। कितना बड़ा होगा, कहीं उसका अंत नहीं। जब उसका अंत नहीं तो कहीं तक भी कर अरबों खरबों 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 जितना दूर होता जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। कितना बड़ा है जिसको आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके बाद कुछ नहीं है। बाबा ने कह दिया इसके बाद कुछ नहीं है। इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से ध्यान से बैठकर सोचे कोई तो उसे समझ में आ सकता है। बहुत अच्छी तरह से इस विषय पर बात करें कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे चारों तरफ कितनी दूर तक आकाश होगा, कितनी दूर तक आकाश होगा, क्या उसके बाद कहीं कोई अंत आ जाएगा, क्या अब इसके बाद आकाश नहीं है, आएगा? आकाश के अंत की कोई भी विधि जानने की नहीं। ये सारा राज सिर्फ परमपिता परमात्मा ही जानता है। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र यहां स्थूल वतन में होता है, इस पृथ्वी पर होता है ये चक्र। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों युगों का जो चक्र है वो सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, इसी पृथ्वी पर होता है। ध्यान में आत्मा कहां जाती नहीं, क्या सुनाई दिया आपको, क्या समझ में आया? ध्यान में आत्मा कहां जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, ये सब है साक्षात्कार। ये सब क्या है, साक्षात्कार। सिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहां बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख आते हैं, देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी, तुम यहां बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ भी नहीं खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर ये साक्षात्कार होता है, जो ड्रामा पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नूंद है। कोई की बढ़ाई नहीं, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है, ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसका, किसको ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है देवता ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, उन तीनों को देवता कहते हैं, और शिव को क्या कहते हैं,
परमात्मा,
शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वे देवताएं हैं तो मनुष्य, परंतु वो देवताएं हैं और तुम कौन हो, मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले। मनुष्य कौन से हो, देवी गुण वाले। 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं, वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते, सतयुग में भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात ही नहीं है, परंतु क्या है, वो संपूर्ण पवित्र है, अपवित्रता की बात ही नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर आता है, परंतु परमात्मा अथवा आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आती है। दिव्य दृष्टि से सभी चीजें बड़ी देखने में आती है, आएंगी। और राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है, आत्मा क्या है, बहुत महीन है। डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, कि किसी तरीके से आत्मा को पकड़ सके, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरे में वजन करते हैं, तुम जन्म जन्मांतर पदमपति बनते हो। क्या बनते हैं हम? पदमपति बनते हो तुम, जन्म जन्मांतर पदमपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं, बाहर का दिखावा कोई भी नहीं। पदमपति किसे कहेंगे? पदमपति का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पद्म रुपए हो जाते हैं। पद्म का मतलब है पवित्र, पद्म का मतलब है न्यारे और प्यारे। आप ऐसे कर्मों के मालिक बन जाते हैं जो पद्म पवित्र कर्म है। कर्म आपने पवित्र किए हैं, न्यारे प्यारे होकर कर्म किए हैं, तो आप उसके पद्मपति बनते हो, उन पद्म पवित्र कर्मों के मालिक बनते हो। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे खाते में मतलब जो है ना पद्म रुपए जमा हो जाएंगे, या पद्म पाउंड्स जमा हो जाएंगे, या पद्म डॉलर जमा हो जाएंगे, मतलब ऐसा कोई भी बात नहीं है। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ, साधारण रीति इस रथ में बैठकर पढ़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। जिस रथ में बाप आकर पढ़ाते हैं वो है भाग्यशाली रथ। ये है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपने अपना शरीर है नहीं, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूं तो तुमको वर्षा कैसे दूं। मेरे पास अपने पास शरीर नहीं है ना, ऊपर से तो नहीं दूंगा ना, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूं। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने जाकर दूसरा जन्म ले लिया, बाकी विनाशी चित्र आदि को याद करते हैं। वे भूत पूजा हुई ना, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मैं मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन करना नहीं है, कुछ वजन नहीं करता हूं कराता हूं। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूं, तुमको बनाता हूं। उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म, जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्री मत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां कभी भी दुख नहीं होता, कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं, यहां कितना डरते हैं, रोते हैं वहां इतनी खुशी होती है कि हम जाकर क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे, हम जाकर वहां प्रिंस बनेंगे, सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है, तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, तुमको भी क्या कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, तुम्हारे तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। अच्छे आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं, शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वो बाप भी है, टीचर भी है, बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मुझे परम आत्मा कहा जाता है। जी क्या पूछना था? आत्मा, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मुझे परम आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, मैं परम आत्मा तुम्हारे माफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है, पहले पहले ये बनते हैं तत्त्व, ऐसे ही तुम भी बनते हो। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है, मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते, गले नहीं लगा सकते। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना, बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते, तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना, ये क्या चक्कर है? बाबा मेरे साथ सोता भी है, पर तू बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते, तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो।
भाई जी ब्रह्मा अपनी आंखें घाटी लगाते हैं।
ब्रह्मा बाबा
गले में आंखें लगाते हैं, शरीर में आंखें।
बाबा के शरीर में आते हैं। ध्यान से देखो, पहली बात यह है बाबा मेरे साथ सोता है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं बाबा शिव बाबा मेरे साथ सोता भी है। चलो ठीक है जी, पर तू बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। क्यों?
बाबा का तन नहीं है ना,
शिव बाबा का शरीर नहीं, इसलिए वो भाकी नहीं पहन सकता। ठीक है, अच्छा
तुम भाकी पाना क्या है?
गले लगाना, जैसे आप अपने बच्चे को गले लगाते हो। तो मतलब यहां देखो कि बाबा मेरे साथ सोता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते, वो मुझे अपने गले नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। ये तो समझ में आ गई बात। तुमको भाकी पहनते हैं,
बाबा सोने के लिए आते हैं।
अब कुछ भी कह दे, सोना उनको क्या करना है सो करके, है नहीं? बस साथ का अनुभव, जैसे ब्रह्मा बाबा लेटे हैं तो शिव बाबा भी उनके साथ, आत्मा तो दोनों आ गई ना, परंतु वो भाकी नहीं पहनते। जैसे बच्चे को माँ गले लगाती है, ऐसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को गले नहीं लगाते। अच्छा, दूसरी बात क्या है? तुमको भाकी पहनते हैं, हमें शिव बाबा कैसे भाकी पहनता होगा?
ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, जब हम ब्रह्मा बाबा को गले लगाते हैं तो भाकी पहन लेते हैं।
जिनको डाली होगी, हमें तो भाकी डालनी नहीं,
हमें तो डाली नहीं। ब्रह्मा बाबा जब किसी को, बच्चे आते थे बाबा से मिलते थे, बाबा गले लगाते थे, तो शिव बाबा भाकी पहनते थे।
भाई जी हम तो सूक्ष्म बतन में भाकी पहन लेते, साकार में नहीं पहना तो क्या? हाँ
ठीक बात, हमारी सूक्ष्म भाकी। तुम भाग्यशाली हो ना, तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर किराए पर लिया है, तुम उससे गले लगा सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं कैसे शिव बाबा को गले लगाऊं, ये तो मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए तुम लक्की हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं थोड़े ही बनता हूं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबियां हैं। मैं ज्ञान का सागर हूं, शिव बाबा कहते तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं, तुम इस सारे चक्र के राज को जान चक्रवर्ती राजा महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़े ही बनता हूं। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को मिलकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसे होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। बच्चों में क्या पड़ता है? मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटे से फूल विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटे से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूं, ज्ञान सागर तो मैं ही हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन आंखों से शरीर सहित जो भी दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाता। इतने सख्त बातें इतने आराम से बाबा कह देते हैं। ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना इन आंखों से शरीर सहित जो भी दिखाई देता है सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। सफल करने का तरीका क्या है?
तन मन धन बाबा को समर्पण कर दो।
सब कुछ बाबा को दे देना है। तुम जहां खर्च करना चाहो, जैसे खर्च करना चाहो, जैसे इसको यूज करना चाहो करो। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लख की स्मृति, लख को स्मृति में रख, भाग्य को स्मृति में रख, ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इनमें जो भी दृश्य सामने आते हैं वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे रहा हो लेकिन भविष्य में समाया हुआ है। वर्तमान में आपको लगेगा कि मेरा घाटा हो रहा है, परंतु भविष्य में आपको महसूस होगा अच्छा हुआ। भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वे ड्रामा फिर क्या कहेंगे? वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी, अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ा। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित रहोगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होगा। होने के कारण यदि दो तीन उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि दो चार मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि चार घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद की बजाय चार पांच मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से
जी।
हाँ जी हाँ जी
अशरीरी बनना बना बाबा का श्रीमद अनुसार चलना।
अशरीरी बनना
बाबा का श्रीमद अनुसार चलना।
देखो अशरीरी बनना श्रीमत बाबा की पहली श्रीमत है कि तुम आत्मा हो तुम ये शरीर नहीं हो। तो यही जो बाबा की पहली मत आ जाती है उसको थोड़ा हटा दे। ठीक है लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतु करने में भी लाइट रूप हो जाएगी। भारी नहीं लगेगा बोझा नहीं लगेगा एकदम हल्के हो जाएंगे।
लाइट स्वरूप बनना माना शरीर बनना
हल्का हाँ पतले हल्के हो जाना ना लाइट रूप हाँ सूक्ष्म अति सूक्ष्म। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें फोन नहीं। ओम शांति।